organizzati, cosa fa. Se la mia i guardi sugli agenti, cosa fa. Ma dai. Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنيا دار العمل ہے آخرت دار الجزا دنيا دار الفنا ہے آخرت دار الصفا دنيا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے جبکہ جنت سونے چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا کر سکتا تاہم اس دنیا میں انسان کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کے خلاف مجاہدہ کرنا اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا شیطان چاہتا ہے نفس چاہتا ہے کہ انسان من مانی کرے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روح گردانی کرے جبکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکموں کی پابندی کرے ہر انسان کے من میں یہ حق و باطل نفس چاہتا ہے تم من مانی کرو اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تم میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو تو یہ قدم قدم پر انسان کو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے اسی لیے اس کو امتحان کہا کہ یہ دنیا دار الامتحان اور دنیا دار الامتحان دنیا امتحان گاہ ہے یہ سیر گاہ نہیں تماشا گاہ نہیں آرام گاہ نہیں قیام گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم اسے چلا گیا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد آخرت کے مقابلے میں اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت معمولی وقت ہے اس لیے آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا تو اگر 100 سال کی عمر کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک دن کے حساب سے یہ 2.5 منٹ بنتی ہے اس کو کون عقل مند کہے کہ جو 2.5 منٹ کے لیے تو منمانی کر لے اور اس کے بعد اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لے एक छोटे बच्चे को भी कहें भाई तुम्हें हम खाने के लिए ये कैंडी देते हैं मगर इसके बाद तुझे सजा दे रहे थे, तो बच्चा भी आमादा नहीं होता। जिसका जहन कच्चा है, जिसकी तालीम पुख्ता नहीं, वो भी कहेगा कि ये क्या बात हुई कि थोड़ी देर की लज्जत और इसके ऊपर सजा। लेकिन अजीब बात है कि हम लिखे पढ़े लोग, पुख्ता अकलों वाले लोग, तजर्बाकार लोग, हम प्रैक्टिकली यही कर रहे होते हैं कि हम दुनिया की लाड़ी को एंजॉय करते हैं और आखिरत के अजाब को अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। हर इंसान को दुनिया के घर की कितनी फिक्र होती है, औरत को फिक्र है घर, मर्द को फिक्र है कि आखिर रहने के लिए जगह होनी चाहिए और कितना रहना है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, वरना तो उससे कम। तो आखिरत में जहां हमने खरबा खरब साल रहना है तो वहां के घर की भी हमें फिक्र है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, ऐ दोस्त जितना तुमने दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए कोशिश कर लो और जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए। कोई रेशियो प्रोपोर्शन होनी चाहिए ना, तो हमारी जिंदगी का पूरा वक्त इसी दुनिया की जिंदगी के लिए गुजर जाता है। तो ये हम अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते। और ये भी नहीं कि इस दुनिया की जिंदगी को गुजारने तो भाई आगे जाकर फिर उसकी तैयारी कर लेंगे, इसी दुनिया की जिंदगी के दौरान हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कोई अलग वक्त नहीं मिलेगा। कितनी अजीब बात है कि दुनिया में छोटा बिजनेस भी कोई चलाता है तो जब ऑडिट होने लगता है तो वो वक्त से पहले 1 महीना 2 महीना इंटरनल ऑडिट कर रहा होता है, दिन रात लगा होता है। अगर कोई पूछे तो आज नजर नहीं आया, तो जी ऑडिट करीब है, दिन रात लगे हुए हैं। तो दुनिया के ऑडिट से पहले हम इंटरनल ऑडिट कर लेते हैं, या आखिरत के ऑडिट से पहले कभी हमने अपना भी इंटरनल ऑडिट किया कि मुझे क्या होना चाहिए था और मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या थी, क्या उनको मैंने पूरा किया। बिजनेसमैन ऑफिस में काम करने वाले जहां काम करते हैं वहां हर काम को किनारे पहुंचाते, हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते, एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाते। लेकिन आखिरती का मामला है कि उनको हमने टाला हुआ, देखी जाएगी। तो अकलमंदी का तकाजा यह है कि हम इसी दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। और आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वर्जिश करनी है, रोजाना दौड़ना है, भागना है, कोई वजन उठाना है, नहीं। आखरत की तैयारी का मतलब ये कि हमने हर काम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक करना है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। काम तो करना ही होता है। अब देखिए, एक आदमी ने सोना है तो अगर वो सुन्नत के मुताबिक सो जाएगा तो उसको सवाब मिल जाएगा, खिलाफ सुन्नत तरीके से सोएगा तो उसको सवाब से महरूमी हो जाएगी। खाना खाने अगर मसनून दुआ पढ़कर सुन्नत तरीके से खाएगा तो अजर का मुस्तहिक बन जाएगा, और अगर इन सुन्नतों को नजरअंदाज करके खाना खाएगा तो अजर से महरूम हो जाएगा। काम दोनों बंदे वही कर रहे हैं, इसने भी खाना खाया, इसने भी खाना खाया, लेकिन इसका खाना इसके लिए अल्लाह के कुर्ब का दरिया बन गया और दूसरे का खाना उसके लिए अजर से महरूमी का दरिया बन गया। घर के अंदर हम अगर नबी इस्लाम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक रहें तो हमें हर हर अमल पर अजर मिलता है। मोमिन की शान देखिए कि अगर वो सुन्नत के मुताबिक थूक भी फेंक दे अपने मुंह से तो इस पर भी अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाता है। वो बैतुल खला में अगर सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो और बाहर निकले और मसनून दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला अपनी जरूरत से निजात पाने पर भी उसको अजर अता फरमाता है। ये दीन कितना आसान है। तो अपनी आदत को अपनी इबादत बना लीजिए, अपनी आदत को अपनी इबादत बना लीजिए, काम आसान हो जाएगा। कि जो भी करना है, अब देखिए पानी पीने आप एक ही सांस में पी लेते हैं तो आपने सुन्नत के खिलाफ कर लिया, अजर से मारूम। अगर उसके लिए दुआ पढ़ लेते और दरमियान में जैसे सुन्नत तरीका है उस तरह तीन सांसों में पी लेते तो उस पर अजर मिल जाए। तो दीने इस्लाम ने नेकी को बहुत आसान बना दिया। फर्क अगर कहीं पड़ता है तो सिर्फ इंसान की नीयत का पड़ता है। जिनके दिल में आखिरत की फिक्र होती है वो अपनी नेक नियति की वजह से अमलों का अजर ले जाते हैं और दूसरे बंदे महरूम हो जाते हैं। अब देखिए मस्जिद में दाखिल हुए तो सब लोग मस्जिद में दाखिल हुए लेकिन एक आदमी है जो घर से आया मस्जिद में दाखिल हो गया उसको नमाज का अजर मिल गया लेकिन दूसरा आदमी जब मस्जिद में दाखिल होने लगा तो उसने साफ नकली एतकाफ की नियत भी कर ली। अब ये शख्स जितनी देर मस्जिद में रहेगा उसको नकली एतकाफ का सवाब भी मिल जाएगा। तो दोनों बंदों ने एक अमल किया मगर एक ने अपने इल्म को इस्तेमाल किया, अपनी तबीयत को हाजिर रखा तो उसको उसी पर अजर कई गुना ज्यादा मिल गया और दूसरे को अजर थोड़ा। तो मोमिन को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की तरतीब को देखकर नजर रखे अपने आप पर, अपनी आदत को इबादत बनाए, कोशिश करे कि हर काम इस तरह से करे कि जिस पर उसको अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता। कई काम इंसान छोटे समझता है मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में वो छोटे नहीं, वो बड़े मोटे हुआ करते। अल्लाह ताला ने मोमिन को उसकी नीयत के मुताबिक अजर देता है। जिनाचे फुकहा ने लिखा है एक ही अमल में आप अगर कई नीयतों को जमा कर लें तो आपको उतना ही अजर मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में आए, आपने नीयत कर ली कि जी मैं 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ूंगा तो आपको इसका अजर मिल गया। उसी में आपने नियत जमा कर ली कि मैं तहियतुल वुजू की भी नियत करता हूं तो उसका भी अजर मिल गया। उसी में आपने नियत कर ली कि जी मैंने सलातुल हाजत पढ़नी थी और अल्लाह से दुआ मांगनी थी, उसकी नियत कर ली तो उसका भी अजर मिल गया। उसी में नियत कर ली कि अल्लाह ताला ने आज के दिन मुझे सलामत रखा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने की नियत करता हूँ तो शुक्राने के 2 नफल की नियत, उसका भी अजर मिल गया। वो कहानी लिखा है जितनी नियतों को जमा करेगा उतना इसका अजर बढ़ता चला जाएगा। क्या खूबसूरती है इस्लाम की। अल्लाह दिन पहले एक महफिल में दारुल देवबंद के शेख अल हदीस मौला बिलहक दामत बरकात वो भी थे और याजिद भी था, तो वो किताब का रेफरेंस देकर फरमाने लगे कि मैंने एक किताब में पढ़ा है कि फुकहा ने लिखा कि जो लिबास बंदा पहनता है ना, इस लिबास के पहनने में वो 60 नियतों को जमा कर सकता है, 60 नियतों को जमा कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक दो मिसालें देता हूं कि जी मैं लिबास पहन रहा हूं अपना सतर छिपाने के लिए, एक सवाब मिल गया। जी मैं लिबास पहन रहा हूं साफ सुथरा, हदीसे पाक में आता है कि मैला लिबास गाफिल होता है, साफ सुथरा लिबास अल्लाह का जिक्र कर रहा है। शेख वजी साहब मैंने फजाइल जिक्र में हदीस नकल की है, तो मैं इसलिए साफ सुथरा लिबास पहन रहा हूं, जो दूसरी नीयत हो गई। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है खुशू दीना तो कम इंदा कुल्ले मस्जिद, कि मस्जिद में जाओ यानी नमाज के लिए जाओ तो जीनत इख्तियार करो, यानी साफ सुथरे होके जाओ। मैं इस आयत पर अमल करने की नियत कर रहा हूं, तो तीसरा सवाब मिल गया। अल्लाह अकबर। तो अब देखिए कि इस तरह अगर मुख्तलिफ नियतों को जमा करता रहे तो लिबास पहनने में 60 नियतों को ये जमा कर सकता है। कि एक आलिम उसी अमल पर इतना अजर कमा लेता है कि बेइल्म अगर सारी जिंदगी भी लगा रहे तो उतना अजर नहीं कमा सकता। तो हमने जब इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी है तो हमें हर वक्त उसके लिए फिक्रमंद रहना चाहिए। गफलत में वक्त अगर गुजारेंगे तो हम अपना नुकसान, हमारे अकाबिर ने इस दीन को आगे पहुंचाने बड़ी मेहनतें की, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियां दी, तब ये दीन हम तक पहुंचा, हम इस दीन की कदर करें। बल्कि उनको तो दीन पर अमल करने के लिए जानी कुर्बानियां देनी पड़ती। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुशक्कतें और मुसीबतें किन पर आई, फरमाया अल अंबिया, अंबिया इकराम पर आई, सुम्मल अमसल फल अमर, फिर जिनकी जिंदगी अंबिया के मुशाबे हुई और जिनकी जिंदगी उनके मुशाबे हुई उन पर भी उतनी आज। तो उन्होंने आजमाइशों के जरिए से, मुशक्कतों के जरिए से दीन हम तक पहुंचा। सीरत नबी की किताबों में लिखा है कि एक मरतबा मक्का मुकरमा में बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, रात का वक्त था, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बादल की घिन गिरज की वजह से लोगों के दिल कांपते थे और जोरदार बारिश होने लगी, लोग अपने अपने घरों में दबक के बैठ गए। जब बादल गरजता तो लोगों के दिल दहल जाते। इस हालत में, इस वक्त में अबू जहल का दरवाजा खटखटाया गया, तो अबू जहल की बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही हाजतमंद और जरूरतमंद है जो इस मौसम में हमारे दरवाजे पे आया। अबू जहल सुन के कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, हाँ मैं जाता हूं और जो वो कहेगा आज मैं इसकी मुराद पूरी कर दूंगा। ये वर्डन देकर अबू जहल जब अपने घर के दरवाजे पर आया और दरवाजा खोल कर देखा तो उसने अल्लाह के महबूब को सामने खड़ा, हैरान होकर पूछता है भतीजे इस मौसम में रात का वक्त है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लोगों के दिल कांप रहे हैं, तुम मेरे दरवाजे पे कैसे आए? फरमाया किसे सजान, क्योंकि अल्लाह का खौफ दिलों पर तारी है, मैं भी यही सोच के आया कि मुमकिन है इस मौके पर आप मेरे रब का पैगाम कबूल करें। जो मक्का मुकरमा में नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे वो सब के सब मुखालिफ हो गए। तो महबूब ने दिल में सोचा कि चलो ताइफ जाते हैं, ये जरा बाहर के लोग हैं, मुमकिन है कि ये मेरी बात को कबूल कर ले। तो नबी अलैहिस्सलाम सफर करके संगलाख पहाड़ है ताइफ पहुंचे, और वहां के तीन बड़े लोग थे, उन्होंने बात करना ही गवारा न किया, उल्टा बच्चों को पीछे लगा दिया, जिनाती बच्चों ने पत्थर मारे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक जो खून था उससे भर गया। इस हाल में आप थक के एक अंगूर के बाग के पास आकर बैठे, और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्म इन्नी अश्कु इलैका ज़ौफ़ कुव्वती व क़िल्लत सीहती व सवाय। ऐसी अजीब दुआ है, इंसान हैरान होता है अल्लाह ताला के महबूब ने कैसी दुआ की। उसने फरमाते हैं, ए अल्लाह अगर तू राजी है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, और अगर तू नाराज है तो तुझे उस वक्त तक राजी करना जरूरी है जब तक के तू राजी नहीं होता। ए अल्लाह मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल मांगता हूं जिससे दुनिया की सब जुलमतें रोशन हो। अल्लाह ताला के महबूब ने कैसे आजजी वाली दुआएं मांगी, और सहाबे किराम को भी मुझे तक इंसानी पर ये दीन के साथ कुछ आसान थोड़ा था, ऐसी मुशक्कतें उठाई कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात, इसको सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने और सईद आयशा और अस्मा रजी अल्लाह ताला ने दोनों बहनों ने रवायत किया है। फरमाती है कि सिद्दीक अकबर नानो घर थे कि किसी ने आके बताया कि भाई आप तो यहाँ हो तो मस्जिद में हरम में आपके साहिब के साथ क्या हो रहा है। तो सिद्दीक अकबर नानो भागे हुए गए, कहते हैं जब वहां जाकर देखा तो कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम को घेरा हुआ और ईजा पहुंचा रहे थे। उन्होंने देखा तो देखते ही फरमाया, अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, और तुम ऐसी हस्ती को मारने के ऊपर तुल चुके हो कि जो कहते हैं कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। कुफार ने ये सुनकर नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ा और अबू बकर सिद्दीक लाने को पकड़। किताबों में लिखा है इतना मारा कि बिल आखिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब वो अनकॉन्शियस होकर गिर गए जमीन पर तो कुरैश मक्का में से एक शख्स था जिसका नाम था उतबा बिन रबिया, उसने जूता पहना हुआ था जिसके नीचे मोटा चमड़ा लगा हुआ था। उसने वो जूता उतारा और सिद्दीक अकबरानों के चेहरे पे मारना शुरू कर दिया, जिस्म पे नहीं बाकी मार रहा, उनके चेहरे पे उसने मारा। और किताब में शेख अजीज साहब ने फरमाते हैं कि इतना मारा कि चेहरा सूजने से आगा का पता नहीं चलता था, चेहरा लहू लहान है। अब डायरेक्ट चेहरे पे अगर लग रही हो कोई चीज तो फिर चेहरे का क्या है। जब उसने देखा कि चेहरा लहू लहान हो गया और बिल्कुल सूज गया तो वो बड़ा मोटा था, उसने क्या किया कि सिद्दीक अकबरानो सीधा जो जमीन पर लेटे हुए थे बेहोश, वो पेट पर चढ़कर खड़ा हुआ और वो उस पर चढ़कर छलांग लगाता और फिर अपनी एड़ियां उनके पेट के ऊपर मारता। आप इमेजिन कर सकते हैं मोटे आदमी का 2 2.5 मन का वजन हो और वो यूं छलांग लगाता और छलांग लगाकर एड़ियां उनके पेट के ऊपर मार, इतनी मरतबा उसने अपनी एड़ियां उनके पेट में मारी कि वहां मौजूद हर बंदे को यकीन हो गया कि अबू बकर फौत। किसी ने उनके कबीले वालों को बता दिया तो वो कबीले वाले भाग आए। वो चाहते थे कि अबू बकर सिद्दीक नानों को उठा के ले जाए मगर इतने जख्मी थे कि उठाया नहीं जाता। उन्होंने चादर डाली और अबू बकर सिद्दीक नानों को गठड़ी की तरह बांधा और गठड़ी बांध के ले गए। ये हालत। और जाते हुए कह गए अगर अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए तो हम इसके बदले में उत्पम बिन रबिया को कत्ल करें। पूरा दिन अबू बकर सिद्दीक नानों को होश नहीं आया। जब रात ईशा का वक्त हुआ तो थोड़ी सी उस वक्त आंख खुली, कुछ होश आया तो सिद्दीक नानों ने सबसे पहली बात जबान से ये निकाली कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल में, नबी अलैहिस्सलाम के साल में। वो जो रिश्तेदार कुरैश थे उन्होंने सुना तो वो तो गुस्से में चले गए कि जिनकी खातिर ये हाल हुआ, जरा होश आया तो उन्हीं का पूछते हैं कि वो किस साल में। मगर जाते हुए उनकी वालदा उम्मे खैर को कह गए कि उम्मे खैर कुछ खिला देना, इसको इतनी आंखों पे जो है वो चोटें पड़ी हैं और पेट खाली है। अब उम्मे खैर उनको कुछ खाने के लिए देना चाहती है। उन्होंने कहा अम्मी मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे नबी अलैहिस्सलाम की खैरियत के बारे में पता नहीं चलेगा। उसने कहा बेटा मुझे कैसे पता चले, मैं औरत दाद हूं। उन्होंने कहा अम्मी आप ऐसा करें जाए और उमर इब्न खत्ताब की बहन उम्मे जमील उससे जाकर पूछे। तो उनकी वालदा गई और उसने जाकर उम्मे जमील से पूछा। उम्मे जमील ने अपना ईमान छुपाया हुआ था, वो घबराई। उसने कहा कि मुझे क्या पता कौन के हाल में, अच्छा चलो मैं तुम्हारे बेटे की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चलती है। वो भी बहाने से साथ आ। जब वो सिद्दीक नानों के सामने आई तो उन्होंने आते ही पूछा कि उम्मे जमील बताओ मेरे आका मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल में। उसने इशारा किया आपके बकर तुम्हारी वालदा काफरा है, कलमा नहीं पढ़ा और ये सुन रही है। तो वो फरमाने लगे कि अगरचे काफरा है मगर मेरी वालदा, घबराओ नहीं तुम बताओ। तो उन्होंने बता दिया कि नबी इस्लाम दार अरकम में है और खैरियत से है। ये सुना तो सुनते ही सिद्दीक अकबर ने जबान से कहा अम्मी जब तक मैं अपने महबूब को देख नहीं लूंगा मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक मैं महबूब का चेहरे का दीदार नहीं कर लूंगा उस वक्त तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मां ने कहा बेटा हम तुम्हें कैसे लेके जाए। चुनाचे एक तरफ से उनकी वालदा उम्मे खैर ने उनको सहारा दिया और एक तरफ से उम्मे जमील ने सहारा दिया और वो घिसटते पांव के साथ जख्मी बदन के साथ दारे अरकम में पहुंचे। हदीस पाक में आता है कि जैसे ही दरवाजा खुला और नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप अपनी जगह पर उठे और अबू बकर सिद्दीक के करीब आकर उनके पेशानी का बोसा लिया। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने पेशानी का बोसा लिया तो फिर सहाबा सारे के सारे अबू बकर सिद्दीक के ऊपर झुक गए और उन्होंने उनके चेहरे को चूमना शुरू किया। ये जो है ना किताब के ऊपर जमा रहना, ईमान की हिफाजत करते रहना, ये तो क्या आसान काम। इसको कहते हैं तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना, ख्वाहिशात को छोड़ देना, सब रुकावटों को तोड़ देना और अल्लाह की किताब के ऊपर जमे रहना। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम। तो वही समझते हैं कि जिनको हालात का पता है कि इस दीन को कितनी कुर्बानियों के साथ आगे बढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा फरमाना था, बात बड़ी अजीब है, तो उसमें एक शर्त कुफार ने लिखवाई कि अगर कोई काफिर मुसलमान होगा तो उसे आप लोगों को वापस भेजना पड़ेगा। मुसलमान काफिर बन जाएगा तो हम उसे वापस ही भेजेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से बड़े इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इस शख्स को भी कबूल कर लिया था। अब मुआहिदा लिखा जा चुका है। लिखने वाला कुरैश मक्का की तरफ बंदा आया था, उसका नाम था सुहेल। अल्लाह की शान देखें कि सुहेल का अपना जवान बेटा वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, तो बाप ने उसको घर के अंदर हथकड़ियां लगाई थी और गेड़ियां लगाई और उसको रोज तकलीफें देता था, सजाएं देता था, मारता था। वो उसका नाम था अबू जुंदल रजी अल्लाह। जब इधर मुआयदा और आता ना तो उधर अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला नो किसी तरह उस वो जंजीरों को छुड़वा कर तो वो भी वहां आ गए और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए। अल्लाह के नबी मुझे घर में इतनी तकलीफें पहुंची है और भेड़िया उस वक्त उनकी देनी थी पाओ में और वजनी थी और मुश्किल से चल रहे थे और जख्मी खड़ी सब है। अब मैं मुश्किल से आपके पास आया हूँ, अल्लाह के नबी अब मुझे आप अपने अपनी सरपरस्ती में कबूल फरमा लें। जब सहेल को पता चला उसने कहा कि जनाब वायदे के मुताबिक उसको वापस करें। नबी साहब ने फरमाया कि अभी साइन तो नहीं हुए। उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे। चुनाचे अल्लाह के महबूब को वापस करना पड़ा। अब जरा उस नौजवान की हालत का अंदाजा लगाइए कि जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करता रहा और बिल आखिर वहां से भाग कर वो महबूब की खिदमत में आया और अब यहाँ अल्लाह के महबूब फिर उसे वापस करना। हदीस में आते हैं कि नबी ने फरमाया कि अबू जुंदल तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारा साथ है। तो अबू जुंदल नाम जब वापस अपने वालिद के पास पहुंचे तो उनके वालिद ने सहाबा के सामने उनके रुखसार पे थप्पड़ लगाने शुरू किए। अब वो जंजीरों में बंधा हुआ नौजवान रोता हुआ अल्लाह के महबूब को देखता जा रहा है और उसके वालिद बालों से पकड़ के उसको कसी। उस नौजवान के दिल पे क्या चल रही है? अल्लाह ताला की शान देखे। चंद दिन के बाद एक और इसी तरह नौजवान था, गुलाम किसी का, उसका नाम था अबू बसीर। वो भी भाग के नबी रसूल की खिदमत में आया, कलमा पड़ा था, उसे तकलीफ नहीं जाती थी, तो इतनी तकलीफें होती थी कि जान बचा के वो वहां पहुंचते। तो कुफार ने पीछे से दो बंदे भेजे कि जनाब मुआहिदे के मुताबिक इसको वापस कर। अल्लाह के महबूब ने उनको कहा कि भाई मैं अपने मुआहिदे के मुताबिक पाबंद हूँ वापस भेजने का, तो आप वापस चले जाओ। अबू बसीर के दिल पे क्या गुजरी होगी, कितनी मुश्किलों से तो मैं यहाँ पहुंचा और अब मुझे फिर वापस भेजा जा रहा है उन्हीं लोगों के पास जो मेरे जान के दुश्मन है। चुनाचे उनको वापस भेजा। अल्लाह की शान देखें कि रास्ते में जो दो काफिर उनको लेके जा रहे थे उनमें से एक सो गया और दूसरा बैठा हुआ था, तो इन्होंने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी और उसको कहा कि तेरी तलवार तो बड़ी कीमती नजर आती है। तो वो फूला ना थमाया और उसने तलवार दिखा दी कि हाँ देखो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। जब इनके हाथ में तलवार आई तो इन्होंने वार किया और उस काफिर को तो नहीं मिलता, दूसरा उठा वो भाग गया। तो अबू बसीर वहां से फिर आए नबी इस्लाम की खिदमत और आकर रख दिया, ऐ अल्लाह के नबी आपने तो मुआहिदे के मुताबिक मुझे वापस भेज दिया था, अब तो मैं अपनी बहादुरी की वजह से वापस आ सकता, अब मुझे वापस ना फरमाइए। नबी इस्लाम ने जवाब दिया, अबू बसीर मैं जंग के शोले नहीं भड़काना चाहता। अब इस जवाब को सुन के अबू बसीर ने फिर स्मेल कर लिया कि अगर कुफार ने कोई बंदा और भेजा तो अल्लाह के महबूब फिर वापस कर दे, चुनाचे वो मदीना में नहीं रह सकते। अब वो वहां से बाहर निकले। अब उस नौजवान से जरा दिलो दिमाग के बारे में सोचे, न घर रह सकते हैं कि वहां जान के दुश्मन, न अल्लाह के महबूब के पास रह सकते हैं कि आप वादे के पाबंद। अब वो वहां से चले, कहां जाए, कोई दर नहीं, कोई घर नहीं। वहां से वो सीधा समुंदर जहां पड़ता था उसके किनारे चले गए। अब अकेले न खाना है न पीना है न कोई पास है। इस हालत में उन्होंने जिंदगी वहां गुजारनी शुरू कर दी। बहुत भूख लगती तो कहीं से कोई घास के पत्ते मिलते तो वो चबाते। इस हालत में उन्होंने वहां अपना वक्त गुजारा। अल्लाह ताला की शान देखें कि उन जिंदर लालों को पता चला तो वो भी वक्त मौका मिला तो वो भी घर से भाग के अबू बकीर के पास पहुंच गए। कुछ अरसे बाद दो तीन और नौजवान इसी तरह पहुंच गए। जब वहां 8-10 नौजवान हो गए तो कुरैश मक्का को दिल के अंदर बहुत खतरा हुआ कि इधर से हमारे तिजारती काफले जाते हैं, ऐसा ना हो कि उसके रास्ते में रुकावट डाले वो तो मसला बन जाएगा। तो उन्होंने नबी इस्लाम की खिदमत में खत भेजा कि आप ऐसा करें इन नौजवानों को अपने पास बुला लें, कम अज कम किसी कानून के तहत तो ये आ जाएंगे, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। जब खत मिला तो नबी इस्लाम ने अबू बसीर के नाम खत लिखवाया। अबू बसीर, अब कुफार ने मुझे इस बात की इजाजत दे दी है मुआहदे के मुताबिक, लिहाजा तुम्हें इजाजत है कि तुम वापस मदीना आ जाओ। जब वो पैगाम लेकर एक सहाबी अबू बसीर लानों के पास पहुंचे तो देखा कि वो वहां बीमार थे और उनके पास दवा नहीं थी और पहनने को कपड़े भी नहीं थे और ठंडा मौसम था। उस ठंडे मौसम में बीमारी की हालत में वो वहां समुन्द्र के किनारे थे, न खाने को था न पीने को था। चुनाचे वो जमीन पर लेटे हुए थे, उस सहाबी ने जाके उनको वो पैगाम दिया कि अल्लाह के महबूब ने ये आपकी तरफ रुक्का भेजा है। अबू बसीर लानो ने हाथ में लेकर रुक्का पढ़ा, अभी पढ़ रहे थे कि वो रुक्का गिरा और उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल्किताब, जिन लोगों ने किताब और सुन्नत पर इस्तेकामत दिखाई उनको क्या क्या कुर्बानियां थी, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए आज सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती थी कि मेरे वालिद गिरामी पर इतनी मुसीबतें इस दुनिया में आई कि अगर वो मुसीबतें दिन के ऊपर पड़ जाती तो दिन भी रात में तब्दील हो जाता। मर्दों ने कुर्बानियां दी, औरतों ने कुर्बानियां, हम इस्तेकामत उनकी देखते हैं हैरान हो जाते। जब नबी इस्लाम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो रात का वक्त है, सिद्दीक इस्लाम के दरवाजे पर तशरीफ लाए तो वो कब सिद्दीक फौरन बाहर आ गया। तो नबी इस्लाम ने हैरान होकर पूछा, अबू बकर जाग रहे थे? अल्लाह के नबी में जाग रहा था। क्यों जाग रहे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन से मुझे तवक्को थी कि आपको हिजरत का हुक्म दिया जाएगा और ये भी तवक्को थी कि आप इसको आजिज को अपना खादिम बनाएंगे और साथ ले जाएंगे। जब से ये ख्याल आया अबू बकर ने रात का सोना छोड़ दिया, ऐसा ना हो आप मेरे दरवाजे पर आए और आपको मेरे दरवाजे पर इंतजार में खड़ा हो। ये होते हैं आज के साथ। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक लानो उस वक्त तैयारी की। तैयारी क्या की? बीवी को कहा कि तुम हमारे लिए खाना पका दो। बेटी अस्मा से कहा कि तुम छोटी हो और तुम खाना हमें घर में पहुंचा देना, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। अपने बेटे अब्दुल रहमान से कहा कि सारा दिन शहर के हालात नोट करना और रात के अंधेरे में हमें आके बतला देना। अपने गुलाम फहीरा से कहा कि तुम बकरियां चराना और चराने के बहाने गार में आके हमें दूध पिला देना। खुद भी साथ है, बीवी भी काम पर लग गई, बेटी भी, बेटा भी, गुलाम भी, पूरा घराना महबूब की खिदमत के ऊपर तस्की। अब आगे साथ चलते। पहले दिन तो अस्मार ने खाना पहुंचा, जब वो दूसरे दिन पहुंचाने के लिए आई तो अल्लाह ताला के महबूब ने देखा कि उस बच्ची के माथे के ऊपर जख्म का निशान है और वो बच्ची बहुत ही डिप्रेस्ड नजर आ रही है, जैसे गमजदा होती है। तो नबी ने पूछा, अस्मा तुझे क्या हुआ? कहने लगी है अल्लाह के नबी, लश्कर जब मैं आपको खाना देकर वापस जा रही थी तो मक्का मुकरमा दाखिल होते हुए मुझे अबू जहल ने देख लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। कहने लगा अस्मा बताओ कि तुम्हारे वालिद कहाँ है, तुम्हें पता है? अल्लाह के नबी मैंने कह दिया हाँ मुझे पता, सच बोला, आपने सिद्दीक की बेटी थी और सिद्दीका की बहन थी, सच बोला। हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रती, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरी। तो मैंने जब उसे बता दिया तो वो कहने लगा तो मुझे बताओ वो कहाँ है, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और उसने कहा आसमान में तुझे बहुत मारूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अल्लाह के नबी पहले वो मुझे धमकाता रहा, फिर अचानक उसने जो जोरदार थप्पड़ मेरे लगाया तो मैं नीचे गिरी, चट्टान पर मेरी पेशानी लगी तो पेशानी से खून आ गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। उसने मुझे बालों से पकड़ के फिर खड़ा किया, कहने लगा आसमान में तुझे जान से मार दूंगा, बता तेरे वालिद कहाँ है, तुम्हारे पैगंबर इस्लाम कहाँ है। अल्लाह के नबी मैंने उसे जवाब दिया अबू जहल मेरी जान तो तेरे हवाले, मैं मोहम्मद अरबी को तेरे हवाले नहीं करूंगा। الذين يمسكون بالكتاب, यह है तमस्सुक बिल किताब, ऐसे डट गए वो दीन के ऊपर के फिर पहाड़ हिलाना आसान था, उन लोगों को हिलाना मुश्किल। क्या बच्चे क्या बड़े क्या मर्द क्या हैरान होते। सैयदना जुनैरा रजी अल्लाह ताला 16 की उम्र थी तकरीबन, अब इस उम्र में औरत बूढ़ी हो जाती है और ये अबू जहल या अबू लहब में से किसी एक की बांधी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। जब अबू जहल को पता चला कि हमारे घर की खादमा और कलमा पढ़ ले, उसने बुला लिया और बुला के उसने पहले पूछा, जब पता चला कि कलमा पढ़ लिया तो उसने मारना शुरू कर, इस उम्र की औरत को मारना शुरू कर, हत्ता के मार मार के थक गया, लेकिन जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी आंख से आंसू ना आए, वो सब्र करके इसकी मार को बर्दाश्त करती रही। जब इसने देखा ना कि मैं थक गया हूं मार मार के और ये शिद्दत से नहीं होती, इसने कोई चीज उठाई और उसके सर पे दे मारी। वो किताबों में लिखा है कि जब उनके सर पे चोट लगी तो उनकी पेनाई चली गई, बैक साइड के ऊपर जब सर पर चोट लगी डॉक्टर लोग समझते हैं पेनाई चली गई। अब जब पेनाई चली गई तो अबू जहल ने उसको ताना दिया कि देखा लात और मनात में तेरी बेनाई अच्छी है। जैसे उसने ये कहा तो सुनहर लाने की आंख में से आंसू आ गए। उसने देखा कि अब ये रोई है, अब जरा ये सोचेगी जाके तो सुनहर अल्लाह ताला ना आंखों से नजर तो आ नहीं आता, हाथ से देखती देखती कमरे में पहुंची और कमरे में पहुंच के दरवाजा बंद के सजदे में जाके, मेरे मौला जब मेरा वजूद नहीं था तूने मुझे पैदा किया, मुझे पास बेनाई नहीं थी तूने बेनाई अता की, ए अल्लाह इन्होंने मुझे वैसे तकलीफ पहुंचाई, मैं सबर करके उसको बर्दाश्त करती रही, वो मुझे ताना देते हैं कि तेरी बेनाई को लात और मनात ने छीन लिया, अल्लाह मेरी बेनाई को तो आपने छीना है, मेरी बेनाई मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं आपकी वहदानियत का इजहार कर सकूं। अल्लाह ने दुआ कबूल की, सजदे में उठने से पहले अल्लाह ने बेनाई वापस कर। الذين يمسكون بالكتاب, ये लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी और इस दीन को हिफाजत के साथ आने वाली नस्ल तक पहुंचा। एक तारीख है कुर्बानियों की मेरे दोस्त, अगर इसकी तफसील में जाएं तो शायद ये आज थक जाएगा और ये वाकया खत्म नहीं है।
वो
بوڑھی عورت کا واقعہ توجہ سے سنیے. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکرم کی جو بڑی بیٹی ہے, آج کل صدیق اکرم کی بڑی بہن ہے, ان کی شادی زبیر اکرم سے ہوئی. پھر اللہ نے ان کو بیٹے دیے, ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن زبیر. یہ وہ بچہ تھا کہ جس کی وجہ سے نبی اسلام نے ان کی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی. یہ وہ خوش نصیب ہے, اللہ کی شان, جوانی کی عمر ہے. ان کو ایک مرتبہ ان کے دشمنوں نے گھیر لیا, ان کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے, ان کو پکا یقین تھا کہ بس اب میرے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ ہوں تو میں اپنی والدہ کو آخری سلام تو کر لوں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر داخل ہوئے اور اپنی بوڑھی والدہ کے پاس آئے. بوڑھی والدہ جو تھی اس کی آنکھوں پہ موتیا بند آ چکا تھا, تو اس کی بینائی نہیں تھی, بوڑھی ہو گئی تھی, بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی. اب وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور والدہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ امی میں آپ کو آخری مرتبہ سلام کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید کر دیں. تو وہ بیٹے سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تم حق پر ہو یا باطل پہ ہو؟ بیٹے نے جواب دیا امی میں حق پہ ہوں. تو فرمانے لگی بیٹا اگر حق پر ہو تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت. بوڑھی ماں جواب دے رہی ہے کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہو. وہ کہنے لگے امی میں شہادت سے نہیں گھبرا رہا, ہاں یہ خیال دل میں آتا ہے کہ یہ لوگ مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش کا قیمہ بنا دیں, مسلح کر دیں گے, میری لاش کو کاٹ دیں گے. تو ماں بوڑھی جواب دیتی ہے بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے پھر اس کی کھال اتاری جائے تو اس بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرے. بوڑھی ماں جواب دے جوان بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کھال اتار دی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوتی, اگر تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر قیمہ بنا دیا جائے تو تمہیں اس کا کیا ہوگا. بیٹا کہتے ہیں اچھا امی میں سلام کرنے آیا تھا اب میں جانا چاہتا ہوں. اس وقت اس کی ماں اس کو دعا دیتی ہے اور دعا سنیے کیا دعا دی. سبحان اللہ, دعا یہ دیتی ہے اے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری ساری رات تہجد میں تیرے سامنے کھڑا رہا کرتا ہے. اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں سارا دن تیری محبت میں روزے رکھا کرتا ہے. اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنی ماں اور باپ کو خدمت کی وجہ سے خوش کر دیا, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جائے. کاش کہ ہم نے بھی ماں کی ایسی خدمت کی ہوتی, ہماری ماں بھی ہمیں یہ دعا دیتی اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی. الذين يمسكون بالكتاب, یہ ہمارے اقابل, ایسی باتیں تھی, ایسی استقامت تھی, اور پھر حقوق و لباد اتنے ماں دعا دے رہی ہے, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ساری رات تیرے سامنے تہجد میں قیام میں کھڑا رہتا تھا, گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے کے ساتھ رہا کرتا تھا, اور میں گواہی دیتی ہوں اس نے ماں باپ کو خدمت کے ذریعے خوش کیا, اللہ تم میرے بیٹے سے خوش ہو جائے. اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات کہ پھر ماں کہتی ہے میرے بیٹے اب تم جا تو رہے ہو اور میری آنکھیں نہیں بینائی نہیں کہ میں تمہاری شکل دیکھ سکوں, میرے بیٹے ذرا میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے رخسار کو بوسہ دوں اور میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں. یہ الفاظ ہے کہ بات کہتا کہ بیٹے ذرا میرے قریب ہو جاؤ کہ میں تمہارے رخسار کا بوسہ لے لوں और मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघूं। अल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल्किताब, यह है तमस्सुक बिल किताब से। बूढ़ी औरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की वो मोहब्बत रखी हुई थी और ये सिलसिला चलता रहा। चुनाचे बाद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फकीह दारुल हिजरा, उनके बारे में आता है कि एक मरतबा उनको वक्त के हाकिम ने मर्जी के मुताबिक फतवा न देने के ऊपर सजा देनी चाहिए, तो उसने सजा क्या दी कि इतने बड़े मुहद्दिस को, फकीह को गधे पर बिठाओ, इसके मुंह के ऊपर स्याही लगाओ और इसको पूरे शहर में फिराओ। तो उन्होंने ऐसा किया और किताब में लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का यह हाल था कि जब इस हालत में उनको फिरा रहे थे ना, तो वो कह रहे थे लोगों तुम में से जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो भी सुन ले कि मेरा नाम मालिक इब्ने अनस है। वला यखाफून लौमत अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह मसला खल्क कुरान पेश आया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मसला खल्क कुरान इल्मी नुक्ता था और उनको पक्का पता था कि आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाए। किताबों में लिखा है कि वो सोच रहे थे कि भाई जान बचाना फर्ज है, आज मैं कोई ऐसी बात कर दूं कि जो जू मानी हो कि मेरी बात भी रह जाए और ये भी मुतमिन हो जाए और मेरी जान छोड़ दे एक इल्मी मसले में। चुनाचे वो सोच सोच के घर से जरा बाहर निकले मस्जिद जाने के लिए, तो उनको रास्ते में एक नौजवान मिलता है और नौजवान कहता है कि अहमद बिन हम्बल मैं एक चोर हूं और इन लोगों ने वक्त के हाथमों ने मुझे अपने दुर्रों के साथ इतना मारा जितना वो मार सकते थे और मैं चोरी से बाज नहीं आया, आप कहीं इनके दुर्रों से डर के दीन से ना पीछे हट जा। इमाम अहमद ने खंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस नौजवान की बात सुनकर वो तो चला गया मगर मेरे दिल के अंदर इस्तकामत था। मैंने कहा जो मर्जी होता है मैंने हक बात कही, सारी जिंदगी उसका एहसान अपने सर पर गिरा सकते कि देखो एक ऐसे नौजवान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा काम किया। चुनाचे जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जो दरबारी आलिम था उसने कहा अहमद बिन हम्बल आज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें इनके तकलीफों से बचा लूंगा। तो जब उसने ये बात कही ना तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया कि आज अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं फिर क्यामत के दिन तुम्हें क्यामत की तकलीफों से बचा लूंगा। कैसे लोग दीन की खातिर दीन के ऊपर डटे जाए। मेरे दोस्तों ईमान की कीमत है किसान भी फटती है हर दिन, पक्की बात है। मुख्तलिफ हालात होते और ये कुर्बानियों का सिलसिला बहुत लंबा है, मैं पूरा खोल भी नहीं सकता। एक वाकया सुनाकर जरा बात आगे बढ़ाते हैं किसी और तरह। हमारे अकाबरीन के खादिम, अकाबरीन नहीं खादिम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने दिल में नियत कर ली एक मरतबा कि भाई मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजारे जब तक इन्हें आजादी नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं इसके लिए अपनी जिंदगी वक्त हूं। उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई, तुझे जेल भेज देंगे, मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे। तो जब बहुत ज्यादा उनके खिलाफ मामला चला तो उन्होंने शेर लिखे, तुम यूं ही समझना कि फिना मेरे लिए है पर गैब में सामाने बका मेरे लिए है, अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा अक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا دے دے. اب وہ چلے گئے اپنے ملک سے بیرون ملک کے, میں وہاں جاؤں گا اور اپنا متن نظر بیان کروں گا, لکھوں گا. کئی سال گزر گئے, پیچھے گھر میں جوان بیٹی, اس کا نام تھا فاطمہ, وہ بیمار ہو گئی. جب حکیموں کے پاس لے گئے تو حکیم نے چیک کر کے بتایا کہ اس کو لا علاج بیماری ہے, یعنی فرض کرو ٹی بی, ٹیوبرکلوزس, جس کا علاج اس زمانے میں نہیں ابھی آیا تھا. اس نے کہا یہ چند دنوں کے اندر فوت ہے, اور بچی کا ویٹ لوز ہوتا جا رہا ہے, کمزور ہوتی جا رہی ہے, خون بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ماں نے پوچھا بیٹی جوان سے کہ بیٹی تیری زندگی کی کوئی آخری تمنا؟ تو بیٹی کہتی ہے امی کئی سال ہو گئے ابا حضور کو نہیں دیکھا, میری آخری تمنا ہے کہ مجھے کبھی ایک مرتبہ اپنے باپ کو دیکھنے کا موقع مل جائے. ماں نے کہا بیٹی اپنے والد کو خط لکھو. تو بیٹی نے خط لکھا, ابا حضور میں اپنے بستر مرگ پہ اپنی زندگی کے دن گن رہی ہوں, اگر آپ تشریف لائیں تو بس ایک مرتبہ میں آپ کا دیدار کروں. اب سوچئے یہ بندہ پردیش میں ہو اور جوان بیٹی کا خط ملے کہ میں زندگی کے دن گن رہی ہوں, ابو آ جاؤ, تو باپ کے دل سے کیا گزرتا. بیٹی والو ذرا سوچ کے دیکھو کہ جوان بیٹی اگر خط لکھے اور میسج پہنچے تو پھر دل کی حالت کیا ہوتی. ان کو خط ملا, انہوں نے اسی خط کے بیک سائڈ پر دو شعر لکھ کر بیٹی کو واپس جواب دے دیا. کیا لکھے؟ فرماتے ہیں میں تو مجبور صحیح, اللہ تو مجبور نہیں. میں تو مجبور صحیح, اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں دور صحیح, وہ تو مگر دور نہیں. اپنی بیٹی کو لکھتے میں تو مجبور صحیح, اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں دور صحیح, وہ تو مگر دور نہیں. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور, تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. الذین یوثقون بالکتاب, یہ ہے تو مستقبل کتاب. تو میرے دوستو یہ بات آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان حضرات نے دین کی خاطر تو جانوں کی قربانیاں دی, کیا آج ہم اپنی خواہشات کی قربانیاں نہیں دے سکتے؟ ہمیں اپنی خواہشات نے دین سے ہٹا دیا, ہمیں نیند پیاری ہے, فجر کے وقت مسجد میں آنا ہمارے لیے مشکل. ہم ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنے کی سارے توفیق دی ہو. اور جانے اگر ہمارے اقابر قربان کر سکتے تھے تو کیا ہم خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ کاش کہ آج بھی اس محفل میں ہم اپنے دل میں یہ کمٹمنٹ کر لیں, اللہ ہم تیرے دین کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے. ہمارے اقابر حلال مال سے اپنے پیٹوں کو نہیں بھرا سکتے تھے, آج ہم میں سے کئی حرام مالوں سے اپنے پیٹوں کو بھر لیے. جو ساری رات چٹانیوں پر بیٹھ کر عبادت میں گزار دیا کرتے تھے, آج ان کی اولادیں قوم کے گدوں پر شب باشی کی عادی بن چکی, نہ عشاء کی توفیق نہ فجر کی توفیق. جن کے ماں باپ کے رات کو مطالعہ کرنے کی وجہ سے تیل کا خرچہ ان کے کھانے کے خرچے سے زیادہ ہوتا تھا، آج ان کی اولادوں کو کتاب کھولنے کی توفیق نہیں دے. سوچئے ہماری اور ہمارے ان اقابر کی زندگیوں میں کتنا. ہمیں مسجد کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دل کی یہ تمنا ہو مسجد میں جائے اللہ اکبر کی اذان سے آواز. اگر دل کے اندر یہ تڑپ ہو تو پھر ہم بغیر جماعت کے نماز بھی پڑھ سکیں گے، مسجد میں آئیں گے، اور حق بھی ایسے ہیں اللہ کے گھر کی طرف آئے، اللہ کی عبادت کریں. پھر نماز پڑھے بغیر ہم راتوں کو نہیں سوئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ہمیں لذت نصیب ہو جائے گا، ہمیں اس کا مزہ نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے اور نبی اسلام کی مبارک سنتوں کے اوپر زندگی. اپنے آپ کو سمجھائے کہ تو خوشی ہو خوش ہو کے عمل کرے تو بھی ٹھیک، اور خوش ہو کے نہیں کرتا تو مارے باندھے کرے، میں نے تجھے جبر کے ساتھ سنت پہ چلانا. تو جب اس طرح ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کوئی مشکل نہیں رہے گا سنت پہ. پھر دنیا میں آ رہ کر ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن گئے، پھر اللہ رب العزت کی محبت میں ہمیں نماز کے اندر سرور آئے، محبت الہی کے مزے آئیں. اصل وجہ یہ ہے کہ محبت الہی کے مزے کو ہم نے کبھی چکھا نہیں. اگر کسی کو محبت ہو نہ کسی سے تو اس کی ملاپ کی خاطر ساری رات جاگنا تھا. اگر ہمیں بھی اللہ رب العزت سے محبت کی بڑی کیفیت ہوتی تو پھر عشاء کی نماز کے لیے جاگنا کون سا مشکل کام ہوتا، پھر فجر کی نماز میں اٹھنا کون سا مشکل کام ہوتا، پھر زکات ادا کرنا کون سا مشکل کام ہوتا. یہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں اگر ہمارے دل اللہ رب العزت کی محبت. اور آج آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اچھے عہدے مانگنے والے بڑے، کاروبار مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیویاں مانگنے والے بڑے، بیٹے مانگنے والے بڑے، دنیا کی شہرت مانگنے والے بڑے نظر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنے والے آج بہت تھوڑے نظر آئے. کبھی دیکھا کسی کو کہ کوئی رو رہا ہو بیٹھا ہوا ہچکیاں لے کے، ہچکیاں لے کے، اے مالک میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنا بنا دے. ایک چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لیجیے، اللہم انی اسالک منک، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسالک منک، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. اور اگر اللہ مل گئے تو ہمیں سب کچھ ملے. اتنی چھوٹی سی دعا ہم مانگ لیا کریں روز، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. پھر اس کی برکت میں دیکھیے زندگی میں کیسے آتی. اللہ رب العزت کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو ہمیں پریشانیاں آج کل لگی ہوئی ہیں نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے الٹے کام ہیں جن کی وجہ سے آج پریشانیاں ملا. قرآن کریم میں آیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مسجد آتے ہی. تو بھائی ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہم نے یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اس ایمان کو اپنی اولادوں تک پہنچانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز کرے. نوجوان کیسے ہوتے ہیں، ایک مثال دے کے یہ آج اس بات مکمل کر دے. मालिक अहमद दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा गर्मी के मौसम में अपने घर से बाहर निकला, इतनी सख्त गर्मी थी कि जैसे कि आग बरस रही है, सारे हैवान भी दरख्तों के सारे के नीचे जाके बैठ गए, परिंदे भी बैठ गए, इंसान भी घरों में दबक के बैठ गए। बाहर यूं लग रहा था कि जैसे सूरज आग बरसा रहा है, इतनी गर्मी। मुझे किसी मजबूरी की वजह से बाहर निकलना पड़ गया। कहने लगे जब मैं गली में से गुजर रहा था तो मैंने एक नौजवान को देखा जो पौ से माजूर था, हैंडीकैप था, और वो अपने हाथों के बल जमीन के ऊपर ना घिसटता हुआ, अपनी जानों के बल, सुरीन के बल वो आगे आगे चल रहा। अब गर्म जमीन पे हाथ रखे तो हथेलियां जलती है। कहने लगे जब वो मेरे जरा करीब आया तो मैंने क्या देखा कि उस नौजवान का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हुआ हुआ है गर्मी की वजह से, और उसके कपड़े ऐसे गीले कि जैसे नहा के ये गुस्ल खाने से, इतना पसीना, चेहरा सुर्ख उठा जैसे उसकी जिल्द कोई आग जो है धूप ने जला दिया, और वो आगे आगे घिसट रहा है। मैंने सलाम किया, मुसाफा किया, पूछा कौन हो? उसने कहा मेरा फला नाम है और मैं फला शहर से चला हूं और मैं हज की नीयत से आगे बैतुल्लाह शरीफ जा रहा। कहने लगे मैंने उससे कहा ओ नौजवान तू मेरे घर आराम कर ले, शाम को जब जरा ठंडक हो जाएगी उस वक्त तू सफर कर लेना, इतनी गर्मी है। वो कहने लगा मालिक अपने दीनार आप तो पांव के जरिए आराम से चलते हैं और मैं तो इंच इंच अपने हाथों के बल घिसट घिसट के चलता हूं, मुझे डर है अगर मैं रास्ते में रुक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हज का वक्त आ जाए और मेरा सफर ही ना कटे, मैं रास्ते में रह जाऊं, इसलिए मैं रुक कर रही। कहने लगे मैंने उसे कहा कि ऐ नौजवान तू मेरे घर आ जा और आराम कर ले, मैं तेरे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देता हूं, तू घोड़े पे सवारी पे सवार होके आराम से अपने वक्त से पहले हज पर पहुंच सकता है मक्का मुकरमा। कहने लगे जब ये बात मैंने की उस नौजवान ने गुस्से की हालत में मुझे देखा और कहने लगा कि मालिक मदीना मैं समझता था तू बड़ा अकलमंद है, ये तूने कैसी बात कही, मेरी मिसाल उस गुलाम की सी है कि जो अपने मालिक से भागा हुआ हो और फिर वो सोचे कि मैं मालिक को मनाता हूँ। अब बताओ उस गुलाम को क्या अच्छा लगता है कि वो सवारियों में शान से सवार होके जा रहे या घिसट घिसट के मालिक को मनाने के लिए जाए। कहने लगे कि ये बात उसने की मुझे हैरान कर दिया और वो चला गया, उसने मेरी परवाही न की। फरमाते हैं कि मैं इस बात को भूल गया, अल्लाह की शान के उसी साल मुझे भी हज की तौफीक नसीब हो गई। जब मैं मीना के अंदर शैतान को कंकरियां मार के वापस लौटा, मैंने देखा कि लोगों का मजमा लगा हुआ है, तो मैंने पूछा भाई क्या बात? वो कहने लगे एक नौजवान है और वो अपने रब से दुआ मांग रहा है और ऐसी अजीब बातें कर रहा है कि सब लोग खड़े उसकी दुआओं को सुन के लुत्फंदोज हो रहे हैं। फरमाते हैं मैंने कहा जरा मुझे भी कुछ रास्ता दो, चुनाते मुझे रास्ता मिला, मैं मजमे के अंदर गया। जब मैंने देखा तो कोई नौजवान वहां जमीन के ऊपर बैठा हुआ था, एहराम उससे बांधा हुआ है, पहले दिन की कंकरियां थी, रमिये जिमार कर चुका था और अब कुर्बानी का वक्त था और वो अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। तो दुआ में ये कहता है रब्बे करीम तेरी रहमत से मैं माजूर भी तेरे घर आ पहुंचा, मैंने तेरे घर का तवाफ भी किया, मैंने मकाम इब्राहिम पे सजदे भी किए, मैंने अरफात के मैदान में वकूफ भी किया, मुज़दलफा में किया। अल्लाह अब मैंने शैतान को कंकरियां मार के अपनी नफरत का इजहार कर दिया, ए अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त है, ये सारे लोग जो मेरे गिर्द खड़े हैं ये अब जाएंगे और जाके जानवरों को कुर्बान करेंगे, अल्लाह तो जानता है मैं फकीर हूँ, एहराम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, ए अल्लाह मैं इस मौके पे अपनी जान की कुर्बानी तेरे नाम से पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। उस नौजवान ने ये बात कही, कलमा पढ़ा और वहीं पर वो फौत हो गया। الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. الله رب العزت ہمیں بھی اللہ قادر کے نفس قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
لا إله إلا الله سبحانك يا رب العالمين على آلك من أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آدھے مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی کردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندان کے عقیدے کو جاری فرما, روئے روئے کے عقیدے کو جاری فرما, ٹھنڈی ٹھنڈی بولتی 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 محبت پیدا فرما. رب کریم جو ہمارے اٹکے ہوئے کام ہیں ان کا ہونا آسان فرما, جو الجھے ہوئے کام ہیں ان کو اپنی رحمت سے سلجھا, ہمارے آنے والے وقت گزرے وقت سے بہتر فرما. ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. رب کریم ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے معلوم فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما, جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ جو بے اولاد ہے ہم کو لائق اولاد عطا فرما, جس صاحب اولاد ہے ہم کی اولادوں کو اقبال بنا, فرمان بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں نواز بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کو مستق دل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے قرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اللہ بندہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دل تبدیل, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, خالی چوریوں کو بھر دینے والے, اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے, اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے مالک ہم نے تو دنیا داروں میں دیکھا کہ اپنے ماں باپ اپنے کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں, اللہ ہم بھی آپ کے کمزور بچے ہیں, آپ ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے. اللہ ہماری اوقات سے زیادہ بول گھٹتے نہ ڈالنے کی, ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے, امتحانوں میں نہ ڈالیے. اللہ ہمارے حال پر کرم کا معاملہ فرمائیے, ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے, اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے, ہمارے کاموں کو خود سنوار دیجیے, رب کریم اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے. احساس اپنی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھ کر دیکھتی ہے, وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی, بچے کو پھینک نہیں دیتی, سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے, وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھے ہوئے ہیں مگر کندھے تو آ چکے ہیں. اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے, ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے. اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے, ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح بھوکے رمائیے, ہمیں نہ تو شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے, حالات کے حوالے نہ کر دیجیے. رب کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں رو لیجیے, اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے. اللہ ہمیں بار بار گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے محبوب کے دل کی حاضری نصیب فرما, ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا نفس ہمارا ہے, اللہ اس کو مطمئن نہ بنا, اور ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما, اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما. رب کریم ہماری گاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جنہوں نے گاؤں کے پیغام بھیجے مرد ہیں یا عورتیں ہیں, قریب ہے یا بعید ہے, اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دنیا میں موت کی سے ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ مدار عربیہ کی حفاظت فرما, اللہ دار القدیم کے نام کی حفاظت فرما, اللہ جہاں اللہ اللہ کی قوموں کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوشوں کی حفاظت فرما. رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحانك انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.